बोलती कहानियां
एक गधे की वापसी। बोलती कहानियां क्रम में आज सुनिए कृष्णचंद्र की इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग, स्वर अनुराग शर्मा का है।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
मानव इतिहास में इस प्रकार की छोटी छोटी बातों के बड़े दूर के परिणाम निकले हैं। उदाहरण के लिए जरा सोचिए, यदि मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान के बजाय चीन पर हमला किया होता तो आज पाकिस्तान चीन में होता। यदि नेपोलियन बोनापार्ट पानीपत में पैदा हुआ होता तो वाटरलू की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय नहीं हो सकती थी। यदि कोलंबस की नाव समुद्र में डूब जाती तो कभी अमेरिका का पता न चलता और बेचारा कोलंबस अपने मुंह से गालिब का ये मिसरा दोहराता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इसी कारण मैं भी कहता हूँ कि यदि ये आरे कॉलोनी ना बनती तो महाराष्ट्र का प्रांत पृथक नहीं होता। यह केवल दूध का अपराध है, दूध जो विभाजित करता है। बंबई के शरीफ लोग लगभग 100 वर्षों तक ईरानियों की फीकी सीठी चाय पीते चले आ रहे थे। अब उन्हें जो खालिस दूध पीने को मिला तो उनका हाजमा बिगड़ गया, और जनता का हाजमा जब बिगड़ता है तो वो तरह तरह की मांगे करने लगती है। हमें महाराष्ट्र चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें हर चीज उतनी सस्ती और बढ़िया चाहिए जितना कि आरे कॉलोनी का दूध होता है। इसीलिए पुराने जमाने में राज्य चलाने वाले लोग जनता की किसी आवश्यकता को कभी पूरा नहीं करते थे। इससे जनता का हाजमा हमेशा ठीक रहता था, किंतु अब वो इतना बिगड़ चुका है कि किसी प्रलोभन पूर्ण वादे के चूर्ण से ठीक नहीं हो सकता। आरे कॉलोनी बन जाने से जहां एक तरफ लोगों का हाजमा बिगड़ा, वहीं दूसरी तरफ निजी तौर पर दूध बेचने वाले ग्वालों की ग्राहकी कम हो गई। सैकड़ों ग्वाले बेकार हो गए। उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया कि ग्राहकी कायम रहे। कभी दूध का भाव कम किया, पानी अधिक मिलाया, कभी घास का भाव कम किया, घसियारे को ज्यादा बाया, कभी पानी की मात्रा कम की और हानि अधिक उठाई, किंतु आरे कॉलोनी के सामने उनकी एक न चली। आरे कॉलोनी का दूध अधिक मशहूर होता चला गया और प्राइवेट व्यापार करने वाले ग्वाले अपने ऊंचे लाभ से हाथ धोने लगे। यदि वे बिल्कुल खालिस दूध बेचते और आरे कॉलोनी के दाम से जरा कम पर बेचते तो अब भी वे थोड़ा सा लाभ कमा सकते थे, परंतु ये तो व्यापार के विरुद्ध है और हमारी जीवन व्यवस्था में उस समय तक व्यापार हो ही नहीं सकता जब तक एक चीज में दूसरी चीज की मिलावट ना की जाए। दूध में पानी, साहित्य में उरियानी, आटे में बुरादा, घृणा पर धर्म का लबादा, घी में तेल, शासन में रिश्वत का मेल, ये तो व्यापार का पहला नियम है। जब ग्वालों का दूध बिकना बंद हो गया तो घीसू घसियारे की घास भी बिकनी बंद हो गई। घर में घीसू घसियारे और बीवी बच्चे के फाके लगने शुरू हो गए। स्थिति इस सीमा तक नाजुक हो गई कि एक दिन जोसेफ डिसूजा की झोंपड़ी में घीसू घसियारे ने मुझे बेचने की सोच ली, और ये तरकीब उसे रमजानी कसाई ने सुझाई थी। कहने लगा, अगर तुम इस गधे को मेरे हाथ बेच दो तो मैं तुम्हें इसके 25 रुपए दूंगा। जोसेफ बोला, हाँ ठीक तो कहता है रमजानी, आजकल तुम्हारी घास तो बिक नहीं रही, इसलिए तुम इस गधे को रखकर क्या करोगे, और फिर 7 रुपए मेरे भी तो बाकी हैं तुम पर, वे भी इसी रकम में से कट जाएंगे। मैं दरवाजे के निकट सरक आया और अत्यंत मौन होकर उनकी बातें सुनने लगा। घीसू बोला, इस बेचारे गधे का कोई खर्च तो है नहीं मेरे ऊपर, खुद ही दिन में इधर उधर से घास चरकर मेरे घर के बाहर आके पड़ा रहता है, दिन भर मेरे बच्चे इसकी सवारी करते हैं और घास का एकाध गट्ठा भी बिक ही जाता है इस पर। रमजानी बोला, वो एकाध गट्ठा तुम खुद अपने सिर पर लाकर बेच सकते हो। अरे तुम खुद सोच लो, पूरे 25 रुपए दूंगा और वो भी दोस्ती में दे रहा हूं, वरना ये गधा तो 15 रुपए में भी महंगा है। घीसू बोला, तुम इस गधे को लेकर क्या करोगे। रमजानी एक आह भरकर बोला, अरे इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल हो चला है, आजकल भेड़ बकरियां ऐसी दुबली पतली आ रही हैं कि एक के अंदर से 3 सेर गोश्त भी मुश्किल से निकलता है। अब ये तुम्हारा गधा खासा हट्टा कट्टा और मोटा ताजा हो रहा है, इसका गोश्त बहुत ही बढ़िया निकलेगा। अरे तुम गधे का गोश्त बेचोगे, घीसू ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बकरी के गोश्त में मिला के बेचूंगा, रमजानी बोला। बकरी के गोश्त में मिलाकर बेचोगे, घीसू हैरत से चिल्लाया। अरे इसमें हैरत की क्या बात है, रमजानी ने जरा गुस्से से कहा, तुम्हारे ग्वाले क्या दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचते। मगर गधे का गोश्त लोगों को पता नहीं चलेगा। अरे ये तो अपने अपने पेशे के गुर की बात है, मैंने तो ऐसे ऐसे उस्ताद देखे हैं जो बकरी के गोश्त में कुत्ते का गोश्त मिला के बेच देते हैं, मैं तो केवल गधे का गोश्त बेचूंगा, और फिर कीमे में कुछ पता थोड़ी लगता है। मेरी टांगे भय के कारण सुन्न हो गई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने मेरी हर टांग के साथ चार चार मन के पत्थर बांध दिए हों। मैं छप्पर की दीवार के साथ दरवाजे के पीछे लगा ये बातचीत सुन रहा था जिसमें मेरे जीवन और मृत्यु का निर्णय हो रहा था। मैं ये सुनना चाहता था कि आखिर घीसू क्या कहता है। एक बेजुबान जानवर ने इतने महीने तक उसके लिए प्राणपण से मेहनत की थी और बदले में घास का एक तिनका न लिया था। घीसू ने कहा, ये गधा मुझसे और मेरे बच्चों से बहुत हिल गया है, उसकी जान लेने का मेरा जी नहीं चाहता। थोड़ी सी और दो यार, लो पियो, रमजानी ने उसका गिलास भरते हुए कहा। अरे तुम उसकी जान कहाँ ले रहे हो? जान लेने वाला या रखने वाला तो ऊपर वाला है, रमजानी ने खपरेल की छत की तरफ एक उंगली उठाकर कहा। तुम तो गधे को खाली मेरे हाथ बेच रहे हो, करनैल सिंह ड्राइवर ने बात पलटकर कहा। अबे कल तू कहाँ गया था रमजानी, यहाँ नहीं आया?
भैया मैं शकीला बानो गढ़वाली की कव्वाली सुनने गया था। जालिम क्या गाती है, अरसे नियाज इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे हमको नाज था वो दिल नहीं रहा।
रमजानी पहले गुनगुनाता रहा, फिर जोर जोर से गाने लगा। घीसू जोर जोर से सिर हिलाने लगा और करनैल सिंह टीन का एक खाली डब्बा बजाने लगा। मैंने इत्मीनान की सांस ली, चलो जिंदगी बच गई, आती हुई मौत टल गई। घीसू घसियारा नशे में बोला, 25 क्या, अगर कोई 25,000 भी देना तो भी अपना गधा ना बेचूं। यार कौन तेरे गधे की बात करता है, जोसेफ जरा क्रोध से बोला, रमजानी का गाना तो सुनने दे। मगर घीसू घसियारे को चिढ़ हो गई थी, वो जोर जोर से अपना हाथ हिलाते हुए बोला, कोई 25 लाख भी दे तो भी मैं अपना गधा ना दूं। इस गधे ने मेरी इतनी सेवा की है, मेरी और मेरे बच्चों की, कि मैं इसे जिंदगी भर अपने पास रखूंगा। कोई 25 करोड़ भी दे तो भी ये गधा ना दूंगा। घीसू घसियारे ने आज तक किसी की जान नहीं ली, ये हमारे धर्म शास्त्र के खिलाफ है, करनैल सिंह चिढ़कर बोला। ले आया ना बीच में अपना धर्म। यार जोसेफ जल्दी से इसका गिलास भर दे। कहां से भर दूं, जोसेफ क्रोध से बोला, 7.5 रुपए की तो पहले ही पी चुका है, कब तक उधार दूंगा।
भर दो भर दो, घीसू जोर से चिल्लाया, वो भगवान देने वाला है, कहीं ना कहीं से तुम्हारा कर्ज भी उतार देगा।
जब उतार देगा तब और पी लेना, जोसेफ बोला, अब मैं एक बूंद ना दूंगा। घीसू ने अपने खाली गिलास की तरफ देखकर रमजानी से कहा,
मेरा गिलास खाली है
और खाली रहेगा, जोसेफ कठोरता से बोला।
1 रुपया देना,
घीसू ने रमजानी से कहा। रमजानी ने जेब से 25 रुपए निकालकर कहा,
1 नहीं 25 देता हूं।
घीसू ने एक क्षण के लिए 25 रुपयों की ओर देखा, एक क्षण के लिए रुका, फिर उसका हाथ हठात 25 रुपयों की ओर बढ़ गया। जल्दी से उसने रुपए जेब में डालकर कहा,
चलो गधा तुम्हारा हुआ, ले भैया जोसेफ अब तो शराब दे दे।
रमजानी मेरे गले में रस्सी डाले मुझे ले जा रहा था और लहक लहक कर गा रहा था,
और जे नियाज इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे हमको नाज था वो दिल नहीं रहा।
अचानक मैंने कहा, जाता हूं दागे हसरते हस्ती लिए हुए, शम्मा कुछ तदर खुरे महफिल नहीं रहा। एकाएक रमजानी ने चौंक कर इधर उधर देखा, मेरी तरफ देखा, फिर मुझे रस्सी से खींचते हुए आगे बढ़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि आवाज कहां से आई थी। उसके चेहरे पर मैंने भय की एक हल्की सी झलक देखी। रात का झुटपुटा बढ़ रहा था और अपने हृदय के भय को दूर करने के लिए रमजानी जोर जोर से गाते हुए मुझे ले जा रहा था और दोहरा रहा था,
और जे नियाज इश्क के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे हमको नाज था वो दिल नहीं रहा।
मैंने फिर कहा, इस बार जरा ऊंचे स्वर में,
मरने की यह दिल और ही तदबीर कर कि मैं शायान दस्ते बाजुए खातिल नहीं रहा।
रमजानी भय से थरथर कांपने लगा। उसने इधर उधर रास्ते में देखा किंतु किसी को न पाकर रात के बढ़ते हुए अंधेरे में चिल्लाकर बोला,
कौन बोलता है?
मैंने कहा, मैं हूं एक गधा।
तुम?
रमजानी की आंखें फटी की फटी रह गईं।
तुम एक गधे होकर इंसान की बोली बोलते हो?
मैंने कहा, मैंने संकल्प कर रखा था कि इंसानों की बोली कभी नहीं बोलूंगा, किंतु जब जान पर बन आती है और इंसान की कृतज्ञता सामने आती है तो गालिब के साथ कहना ही पड़ता है। दिल से हवाए किश्ते वफा मिट गई के वहां हासिल सिवाय हसरते हासिल नहीं रहा।
लाहौल विला कुव्वत इल्ला बिल्ला,
रमजानी ने जोर से कहा और घबराकर उसने रस्सी छोड़ दी और फिर मेरी तरफ पीठ करके इस तेजी से भागा कि मैं उसे बुलाता ही रह गया, रमजानी भैया, ए रमजानी जरा सुनो तो। किंतु उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भय से पागलों की तरह चीखता हुआ कुछ पढ़ता हुआ वहां से हवा हो गया। मैं सिर झुकाए धीरे धीरे कदम रखता हुआ वापस चलने लगा और कुछ मिनट के बाद जोसेफ के झोंपड़े के बाहर पहुंच गया, किंतु घीसू घसियारा उस समय वहां से जा चुका था और करनैल सिंह भी। इस समय अकेला जोसेफ अपने झोंपड़े के बाहर लकड़ी के एक बेंच पर बैठा हुआ अंतिम जाम पी रहा था। जब जोसेफ ने मुझे देखा तो लपक कर आगे बढ़ा और मेरी रस्सी अपने हाथ में लेकर बोला,
रस्सी तोड़ाकर अपनी जान बचा लाए, मगर बच के कहाँ जाओगे मियाँ गधे, सुबह तुमको रमजानी के हवाले कर दूंगा।
यह कहकर उसने मुझे नारियल के पेड़ से बांध दिया। मैंने अवसर देखकर जोसेफ से कहा,
जोसेफ।
हाँ, वो आश्चर्य से चीखा।
मैंने कहा, चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो, इसलिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ और तुमसे कहता हूँ कि मैं गधा ही बोल रहा हूँ।
क्या मैं नशे में हूँ, उसने अपने आप से पूछा।
नशे में तो हो, किंतु ये बिल्कुल सच है कि इस समय तुम्हारा नशा नहीं बोल रहा, यह खाकसार बोल रहा है। बचपन में मैंने इंसानों की बोली सीखी थी।
यह कहकर मैंने जोसेफ को अपनी थोड़ी सी विपदा कह सुनाई। वो मेरा हाल सुनकर बोला, गुड गॉड, बिल्कुल विश्वास नहीं आता, मगर अब तुम्हें अपने सामने बोलता सुन रहा हूँ तो विश्वास करना पड़ता है कि तुम वही प्रसिद्ध गधे हो जिसने पंडित नेहरू से भेंट की थी। अब याद आया, मैंने उसके बारे में अखबारों में भी पढ़ा था। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैंने कहा।
रमजानी के हाथों मेरी जान बचा सकते हो?
वो किस तरह, जोसेफ ने पूछा। रमजानी ने 25 रुपए में घीसू से तुम्हें खरीद लिया।
अरे 25 रुपए में क्या तुम मेरी जान लोगे?
अरे बम्बई में दादा लोग तो 10 रुपए में जान लेने को तैयार रहते हैं, वो भी एक इंसान की जान। तुम तो एक गधे हो, हालांकि पढ़े लिखे हो, पर इससे क्या होता है। विश्व युद्ध में मैं भी एक सिपाही था, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि लाखों इंसानों को कुछ रुपयों की खातिर खून और आग की भट्टी में झोंक दिया गया था। तुम तो महज एक गधे हो।
वे भी गधे थे,
मैंने अत्यंत कड़वे स्वर में कहा।
यदि हिसाब लगाओ तो युद्ध के मोर्चे पर इंसानों की जिंदगी भेड़ बकरियों से भी सस्ती बिकी है। हिरोशिमा के एक बम ने कितनी लाख जाने ली हैं? जरा हिसाब लगाओ, 25 रुपए प्रति व्यक्ति भी नहीं पड़ा होगा।
जोसेफ बोला, इस हिसाब से तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि एक गधे की जिंदगी की कीमत एक इंसान की जिंदगी से ज्यादा पड़ रही है। मैंने उसकी बात अनसुनी करके कहा,
उन लोगों ने बेकार में लाखों इंसानों को मशीन गनों से भून दिया। यदि वे उनका गोश्त बकरी के गोश्त में मिलाकर बेचते तो उन्हें अधिक लाभ होता, और लाभ ही तो वे चाहते हैं।
तुम कैसी भयानक बातें करते हो, जोसेफ चिल्लाया।
इतनी भयानक नहीं जितनी की जिंदगी है, जिसमें 25 रुपयों के लिए एक गधे की रस्सी दूसरे के हाथ में थमा दी जाती है।
तुम चाहते क्या हो?
मैं जीवित रहना चाहता हूँ,
मैंने रुंधे स्वर में कहा।
मेरी तरह के करोड़ों लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो अत्यंत भोले कायर और निरे गधे हैं, किंतु हम सब जीवित रहने का अधिकार मांगते हैं। हम में से कोई अपने गले में रस्सी नहीं चाहता।
खुदाई फौजदार ना बनो, सिर्फ अपनी बात करो, जोसेफ बोला।
मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रमजानी से खरीद लो।
वाह, एक गधे की जान बचाने के लिए रमजानी को 25 रुपए दे दूं? ऐसा गधा नहीं हूँ मैं, जोसेफ बिगड़कर बोला।
अरे तुम मेरी बात पूरी तो सुन लो, फिर कुछ कहो। इसमें तुम्हारा ही फायदा है। यदि तुम मुझे रमजानी से खरीद लोगे तो मैं तुम्हारा ठर्रा बिना तलाशी के माहिम क्रीक पुलिस चौकी के पार पहुंचा दिया करूंगा। अब तक तुम इसके लिए इंसानों से काम लेते रहे जो कभी न कभी पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं, उन्हें सजा दी जाती है और तुम्हारी शराब पकड़ी जाती है। किंतु यदि तुम इस काम के लिए मुझे नौकर रख लोगे तो मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि पुलिस एक बार भी मुझे न पकड़ सकेगी।
वो कैसे?
बहुत आसान काम है, किंतु इसके लिए तुम्हें अपना एक अड्डा बांद्रा में और माहिम क्रीक के बाहर माहिम के इलाके में कायम करना पड़ेगा।
जोसेफ बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, वहाँ पहले से कई अड्डे मौजूद हैं हमारे।
फिर तो इस प्रस्ताव पर कार्य करना अत्यंत सुगम है, और मुझे आश्चर्य है कि आज तक किसी स्मगलर को ऐसी बढ़िया तरकीब क्यों नहीं सूझी।
जोसेफ ने बेचैनी से कहा, अब तुम ज्यादा बातें ना करो, जल्दी से अपना प्रस्ताव समझाओ।
प्रस्ताव बहुत आसान है, तुम केवल इतना करो कि सुबह सुबह मुझे जोगेश्वरी से बांद्रा के अड्डे तक ले जाओ।
अच्छा, फिर?
फिर वहाँ सुबह सवेरे निहार मुंह मेरे खाली मैदे को शराब से भर दो गले तक। मेरे मैदे और आंतों में कई गैलन शराब समा सकती है, इसलिए जब हलक तक शराब भर जाए तो मुझे माहिम क्रीक तक ले जाकर छोड़ दो। वहाँ से मैं स्वयं धीरे धीरे एक आवारा अनाथ गधे की तरह चलता हुआ 5 मिनट में पुलिस चौकी पार कर जाऊंगा। पुलिस को एक क्षण के लिए भी संदेह न होगा कि इस गधे के पेट में इतने गैलन शराब भरी हुई है। वे तो केवल इंसान और उसके कपड़ों की तलाशी लेते हैं, किंतु एक नंगे गधे पर जिस पर कपड़े का एक चीथड़ा तक नहीं है, उन्हें कैसे शक होगा। अतः
मैं प्रत्येक दिन पुलिस चौकी से बिना किसी भय के सुरक्षित गुजर जाया करूंगा। फिर माहिम के अड्डे पर पहुंचकर तुम मेरे गले में रबड़ की नली डालकर पंप के द्वारा शराब निकाल लिया करना और अपने ग्राहकों में बांट देना।
क्या मेरे ग्राहक गधे के पेट से निकली शराब पीना पसंद करेंगे?
मूर्ख हुए हो जो लोग गंदी मोरियों में दबाई हुई बोतलों और गंदे सड़े पीपों की शराब पी लेते हैं। जो लोग साइकिल के गले और पुराने ट्यूबों में ले जाई गई शराब डकार जाते हैं, उन्हें एक गधे की आंतों से निकली शराब पीने में क्या एतराज होगा? सुबह सवेरे मेरा भूखा खाली मैदा गली सड़ी ट्यूबों से तो अधिक साफ सुथरा होगा।
और तुम्हें नशा नहीं होगा क्या?
अरे 5 मिनट में क्या नशा होगा, माहिम क्रीक पार करने में 5 मिनट से अधिक ना लगेंगे। यूं सोचो कि मेरा पेट एक पेट्रोल ले जाने वाली लॉरी का बड़ा सा ड्रम है। बांद्रा रिस्क फिलिंग स्टेशन है, बांद्रा पर तुम इस ड्रम को भर देते हो, माहिम पर खाली करा लेते हो। बहुत बढ़िया, आसान, सस्ता, लाभदायक, टिकाऊ, सुरक्षित और साइंटिफिक सुझाव है।
गॉड ब्लेस यू, जोसेफ ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा। फिर उसने प्रसन्नता से दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी। क्या तरकीब बताई है तुमने, एक स्मगलर गधा, पुलिस कयामत तक शक नहीं कर सकती। होली क्राइस्ट, मैं तो एक ही साल में लखपति हो सकता हूँ। प्रसन्नता के आधिक्य से जोसेफ मेरा मुंह चूमने लगा। अब तो मैं जरूर लखपति बन जाऊंगा, अब तो मैं 25 क्या 100 रुपए देकर रमजानी से तुम्हें खरीद लूंगा। वह इसलिए कि पहले मैं महज एक गधा था और अब मैं एक लाभदायक सुझाव हूँ, और जब इंसान को लाभ दिखाई देने लगे तो वो एक गधे का मुंह भी चूम सकता है। अंदर आ जाओ, जोसेफ ने मेरी रस्सी को खींचते हुए कहा। मैं तुम्हें बाहर नारियल के पेड़ के नीचे बांधने का खतरा मोल नहीं ले सकता, हो सकता है तुम्हें सर्दी लग जाए, तुम्हारे बदन पर तो एक कपड़ा तक नहीं है। मैंने कहा,
दुनिया में करोड़ों बेघर गधे, नंगे या अधनंगे, खुले आसमान के तले सोते हैं।
अजी गोली मारो उन गधों को, मैं तो आज तुम्हें अपने छप्पर के अंदर सुलाऊंगा।
किंतु छप्पर के अंदर तो बड़ी गर्मी होगी,
मैंने इठलाते हुए कहा। अरे मैं आपके लिए छत का पंखा खोल दूंगा डंकी सर, जोसेफ ने मुझसे बड़े गिड़गिड़ाते हुए कहा, और फिर बड़े प्यार से मेरी गर्दन सहलाता हुआ मुझे छप्पर के अंदर ले गया।
धन्यवाद।
ये थी कृष्णचंद्र की कहानी एक गधे की वापसी। आवाज अनुराग शर्मा की थी।
Radio Playback India.